भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया।
ओम शांति। आवाज नहीं आया। ओम शांति। ओम शांति। पिछले तीन दिनों से आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के शांतिवन परिसर में रहकर यहाँ की गतिविधियों को देखकर, अलग अलग प्रवचन सुनकर, इस विश्वविद्यालय के कई अन्य स्थानों को देखकर अवश्य आप ये तो समझ ही गए होंगे कि आप कहाँ आए हैं। ये कोई साधारण स्थान नहीं है जहाँ आप आए हैं, या ये भी स्थान नहीं है कि कोई एक गुरु महात्मा जी बैठे हो, कथा वार्ता चलती हो, या कोई भजन कीर्तन चलते हो, पूजा पाठ चलता हो और श्रद्धालु भक्त आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, कुछ भेंट चढ़ाते जा रहे हैं। इस प्रकार का वातावरण यहाँ नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, जिस विश्वविद्यालय में हम सब ईश्वरीय विद्या ग्रहण करते हैं। और ईश्वरीय विद्या, जिसको हम आध्यात्मिक विद्या कहते हैं, जिसमें आत्मा का अध्ययन होता है, परमात्मा का अध्ययन होता है, कर्म की गति का अध्ययन होता है, समय चक्र का अध्ययन होता है, जीवन में किस प्रकार हम दिव्य गुणों को धारण करें उसका अध्ययन होता है, और मानव ऐसा कर्म करे जो देवता बन जाए, नर नारायण बन जाए, ये ऊंचा लक्ष्य हमें यहाँ मिलता है। परंतु ये सारा ज्ञान हमको दिया किसने? कई पूछते आप कौन से शास्त्र को रिफर करते हो, किस गुरु ने आपको ये सुनाया है? तो पहले तो हम आपको ये बता दें कि यहाँ कोई गुरु की गदी नहीं है। पिताश्री ब्रह्मा बाबा, जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्थापक हैं, उनको हम गुरु रूप में नहीं देखते हैं, उनको भगवान तो कहते ही नहीं है। परमात्मा कौन है, प्रभु ईश्वर कौन है, वो तो हमने समझ लिया कि वो निराकार ज्योति स्वरूप सदाशिव कल्याणकारी, जो सर्वोच्च सर्वोपरि सर्व देवों के भी देव, हम सबके परम पिता शिक्षक सद्गुरु, वो एक ही है। लेकिन ये ज्ञान उस परमात्मा ने पिताश्री ब्रह्मा बाबा के द्वारा दिया, उनको अपना माध्यम बनाया और उनके द्वारा हमें अपनी पहचान दी, जिनको हम हमारे अलौकिक पिता कहते हैं। पारलौकिक पिता परमात्मा तो एक ही है, शरीर का पिता हरेक का अलग अलग होगा, जिसने देह को जन्म दिया माता पिता ने, लेकिन पिता श्री ब्रह्मा बाबा हमारे अलौकिक पिता हैं, जिनके द्वारा परमात्मा ने हमें एक नया जीवन दिया, एक नया जन्म दिया। अपनी पहचान दे करके परमात्मा ने उनके द्वारा हमें एक नया जीवन दिया, नया मार्ग दर्शन दिया। तो कौन थे पिताश्री ब्रह्मा बाबा, इनकी क्या जीवन कहानी है, वो हम आप तक रखना चाहेंगे। क्योंकि मेरा भी ये सौभाग्य रहा कि पिताश्री जी के सानिध्य में मैं लगभग 9-10 साल आई। बहुत छोटी थी जब इस संस्था से जुड़ी, 1959 दिसंबर, तब मैं लगभग 11 साल की थी। अपनी लौकिक माँ के साथ यहाँ इस संस्था में आई मुंबई में, और जैसे ही मैंने पिताश्री ब्रह्मा बाबा को देखा, मुझे ऐसे अनुभव हुआ जैसे ये मेरे अलौकिक पिता हैं। ऐसे अनेकों ने यह अनुभव किया। पढ़ाई करती रही, 69 में मैंने ग्रेजुएशन किया बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, और इसके बाद समर्पित हो गई। यही लक्ष्य रखा कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शिक्षाएं मुझे जन जन तक पहुंचानी है। तो हमें जो प्राप्त हुआ है पिछले 50 से भी अधिक वर्षों से, वो मक्खन के रूप में सागर को गागर में भरकर आप तक देने का हम प्रयास कर रहे हैं, और आपने भी बड़ी रुचि से इसको स्वीकार किया। तो क्या है ये इतिहास, हम देखेंगे। पिताश्री ब्रह्मा बाबा, ये कोई उनका शारीरिक नाम उस हिसाब से नहीं था, ये परमात्मा ने उनको ये नाम दिया, ब्रह्मा, जिसको हम रचयिता कहते हैं, मनुष्य सृष्टि का रचयिता। ऐसे नहीं कि संसार में सब प्रलय हो जाती है, सब नष्ट हो जाता है, फिर ब्रह्मा जी को संकल्प उठता है मैं सृष्टि रचूं, नहीं, ये सृष्टि तो अनादि अविनाशी है। जैसे आत्माएं अनादि अविनाशी है, परमात्मा अनादि अविनाशी है, यह प्रकृति भी अनादि अविनाशी है। तो जैसे आज आपको सुबह बताया कि सिर्फ परिवर्तन होता है, रात से दिन आता है, नया दिन आता है, तो ज्ञान सूर्य परमात्मा ने कैसे इनके द्वारा फिर से नया दिन लाने के लिए यह आध्यात्मिक ज्ञान दिया और इनका नाम रखा ब्रह्मा, आदिदेव, प्रजा का पिता। अब किस प्रकार उसने एक बीज डाला, अपने तन मन धन को स्वाहा किया, आज से लगभग 76 साल पूर्व, और उसके एक बीज ने आज 76 सालों में हम देख रहे हैं पूरा वट वृक्ष के रूप में खड़ा किया है, जो आज 137 देशों में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखाएं हैं, और हमारे जैसी हजारों बहनें, मुख्यतः बहनें, कुछ भाई भी हैं जो इसमें समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं, और आप जैसे लाखों भाई बहने हैं जो नियमित विद्यार्थी बन करके ये ईश्वरीय विद्या ग्रहण करते हैं, अपने घर गृहस्थ में रहकर नौकरी धंधा सब कुछ करते हुए विद्यार्थी के रूप में आते हैं। पांचों ही खंडों में इसकी शाखाएं हैं, और मेरा भी ये सौभाग्य रहा है कि कम से कम 60-70 देशों में तो हम गए हैं। और कैसे हम देखते हैं कि इस ज्ञान को विदेशों में भी बहुत सुंदर रूप से लिया जाता है, अपना जीवन ही वे परिवर्तित कर लेते हैं, शिव परमात्मा को पहचानते हैं। भारत इतना ऊंचा देश है, उसकी महानता को समझते हैं और हर साल भारत में आते हैं। तो कौन थे पिताश्री ब्रह्मा बाबा, ये उनका लौकिक में परिवार था, 5 बच्चे थे और लगभग 60 वर्ष की उनकी आयु हो चली थी, बच्चे पोतरे दोतरे सब हो चुके थे, और कैसे उनके जीवन में एक बहुत बड़ा वैराग्य आया, कैसे आया, क्या हुआ और कैसे उनका जीवन पलट गया, ये पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी हम आप तक रखना चाहेंगे। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, जिनका पूर्व नाम दादा लेखराज था और लखीराज बाबू इस नाम से वे प्रसिद्ध जौहरी थे, जवाहरात का धंधा करते थे। 1876 में उनका जन्म हुआ था और छोटे से परिवार में पैदा हुए, गांव में हैदराबाद सिंध, जो उस समय अविभाजित भारत का एक हिस्सा था, वहां पैदा हुए। इनके पिता एक प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, बहुत साधारण घर था और उस साधारण घर में जन्मे, अपने ही जीवन काल में एक इतने बड़े जौहरी बन गए, जो कलकत्ता में इनका बहुत बड़ा दुकान था और उस हीरों के दुकान में, हीरे जवाहरात के जो दुकान, जवाहरात जो हीरों से सजे रहते थे, उनके व्यापारी भी, उनके जो ग्राहक थे वो भी कोई छोटे मोटे ग्राहक नहीं थे। उस समय के अंग्रेज जो भारत में राज्य करते थे और राजाएं महाराजाएं जो चारों ओर भारत में थे, यहाँ तक कि नेपाल में भी उनका आना जाना रहता था, तो उनका उठना बैठना राजाओं के साथ और अंग्रेजों के साथ था। परंतु बहुत ही सभ्य व्यक्ति थे, बहुत ही धार्मिक विचारों के थे, विष्णु की अटूट भक्ति करते थे, बहुत दान पुण्य करते थे, इसीलिए लखीराज बाबू के नाम से वह प्रसिद्ध थे। कोई भी व्यक्ति उनके द्वार पर आता तो खाली नहीं जाता। तो कहां एक व्यापारी से परमात्मा ने उनको प्रजापिता ब्रह्मा का टाइटल दिया, सारी प्रजा का पिता। तो ये कहानी किस प्रकार शुरू हुई? पिता श्री जी अपने धंधे में व्यस्त थे और लगभग 60 वर्ष की उनकी आयु हो चली थी। परिवार में कोई कमी नहीं थी, बहुत सुखी थे, बहुत सम्मान मान था, भक्ति भी उनकी बहुत ऊंची थी। अपने जीवन काल में अनेक गुरु उनके घरों में, घर में आके विश्राम लेते थे, सत्संग करते थे। दानी महादानी भक्त वो तो थे, गीता का पाठ नित्य करते थे, ट्रेन में सफर करते हुए भी सवेरे नहा धो करके ट्रेन में पहले गीता का पाठ करते थे, तब कुछ और काम करते थे। तो ये उनका नित्य नियम था। लेकिन एक बहुत बड़ी खोज थी। किस बात की खोज? सत्य को जानने की खोज। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, क्यों आया हूं इस जगत में, आखिर जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे कहां जाना है, ईश्वर कौन है, मैं कैसे उनसे मिल सकता हूं, ये प्रश्न उनके मन में बहुत मंडराते थे। और इनका उत्तर पाने के लिए उसने बहुत सारे शास्त्र पढ़ डाले। गीता तो उनको कंठस्थ थी, बहुत सारे गुरु भी किए, लेकिन उनकी खोज पूरी नहीं हुई। 3 मिनट शांति में बैठेंगे।
योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन प्यारा।
वे विष्णु की अटूट भक्ति करते थे, विष्णु ही उनके इष्ट थे। कट्टर वल्लभाचारी थे, श्रीनाथ द्वारे में हर समय हर साल कई बार जाते थे। अब ऐसी भक्ति भावना के साथ उनका जीवन चला, तो कैसे धीरे धीरे उनके अंदर में कुछ वैराग्य सा आया कि 60 साल की आयु बहुत हो गई है, बस अभी रिटायरमेंट लेनी चाहिए, बहुत हो गया, बहुत कमा लिया, अब शांति से भगवान के भजन करने चाहिए। तो कभी कभी सोचते भी थे कि क्या किया जाए, जो भविष्य जन्म भी हमारे सुहाले हो जाए। तो कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आया कि एक दिन अचानक वे विष्णु की भक्ति में तल्लीन थे और उसी समय उनको विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। चार भुजाधारी विष्णु, शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु उनके सामने आके प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया, अहम चतुर्भुज तत् त्वम्, मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ, तत् त्वम्, तुम भी मेरे जैसे हो। और विष्णु के कई रूप उनके सामने आ गए, जैसे हम देखते हैं भारत में श्रीनाथ, द्वारकानाथ, जगन्नाथ, ये कई विष्णु के ही अलग अलग स्वरूप है, बालाजी, विठोबा, विठल, ये भी सब विष्णु के ही अलग अलग स्वरूप है। और वो एक एक करके उनके सामने आते गए और सब ने वो ही वरदान दिया, अहम चतुर्भुज तत् त्वम्, चार भुजाधारी उनके सामने विष्णु जी खड़े हैं और वरदान दे रहे हैं। वैसे कभी भी किसी को अपने इष्ट के दर्शन होते हैं तो अधिकतर इष्ट से जो वरदान मिलता है वो होता है तथास्तु, माना आपकी इच्छा पूरी होगी, आपके अंदर जो मनोकामना है वो पूरी होगी, तथास्तु, वैसा ही होगा। अब पिताश्री को तो कोई मन के अंदर कामना नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी संसार के, अवश्य अपने इष्ट के दर्शन पाने की इच्छा थी और जीवन के लक्ष्य को समझने की इच्छा थी, ज्ञान पिपासा उनके अंदर थी और तो कोई इच्छा नहीं थी। पर ये जो वरदान उनको मिला ये तथा अस्तु का वरदान नहीं था, लेकिन तत्त्वम का वरदान था कि तुम भी मेरे जैसे हो। अब ये जब इसने वरदान अनुभव किया तो इसके मन में जब वापस आया तो महसूस किया, ये कैसा वरदान मिला मुझे, मैं कैसे इनके समान हूँ, मैं तो इनका भक्त हूँ, विष्णु की भक्ति करता हूँ और विष्णु ने मुझे वरदान दिया तो मेरे जैसे हो, तो मैं तो इन जैसा हूँ नहीं, तो इसका मतलब क्या है। तो अपने गुरु के पास वो गया और जिस गुरु के पास वो जाता था उनसे पूछा कि आखिर इसका मतलब क्या है। तब गुरु ने उनको एक बहुत अच्छी बात कही कि जरूर भगवान को आपसे कुछ महान कार्य करवाना है, इसीलिए भगवान का कार्य आपको करना है, आप वैसे ही बहुत दानी हो, बहुत महान हो, आपके अंदर बहुत सद्गुण हैं, तो भगवान ने आपको कुछ और कार्य करने के लिए प्रेरणा दी और ये वरदान दिया कि तुम मेरे जैसा हो और मेरे जैसा कार्य करो, मेरा कार्य करो। तो इनको आया कि मुझे भगवान का कौन सा ऐसा कार्य करना है, तो वो भी तो बताए कि मुझे करना क्या है, परंतु क्या करना है वो तो गुरु भी कैसे बताएगा। तो गुरु ने उनको एक राय दी कि तुम अभी एकांतवास में चले जाओ, कुछ समय के लिए अपने धंधे से थोड़ी छुट्टी लो और एकांत में रहो, तो भगवान आपको और कुछ प्रेरणा देगा, तब पता चलेगा कि भगवान को आपसे क्या करवाना है। तो पिताश्री जी कुछ समय के लिए अपने हैदराबाद सिंध में रहते थे और उनकी दुकान कलकत्ता में थी, वो अप डाउन करते थे और राजाओं महाराजाओं से मिलते थे और उनके पार्टनर कलकत्ता में स्थायी रूप से रहते थे और बाबा ट्रैवलिंग बहुत करते थे। तो बाबा को लगा कि मैं कुछ समय एकांतवास में चला जाऊं, तो बाबा बनारस चले गए। बनारस में उनके एक मित्र रहते थे, तो सोचा वहां मैं कुछ दिन रह करके गंगा किनारे बैठूंगा और संतों का संग करूंगा तो कुछ मुझे भगवान और प्रेरणा देंगे। तो अपने मित्र की कोठी में के बाहर बहुत बड़ा बगीचा था, ये बनारस वाराणसी की बात है। तो एक दिन संध्या के समय वे अपने इष्ट के ध्यान में ही बैठे थे कि अचानक बाबा को इस कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार हुआ, जिसमें बाबा ने देखा कि कैसे तीन रूपों से दुनिया का विनाश हो रहा है। एक तरफ देखा कि अणु बम, ऊपर से हवाई जहाज से कोई बम गिरा रहे हैं, कुछ नीचे उतर रहा है और जहां जहां वो गिरता है वो वहां आग ही आग निकलती है। तो धीरे तो देखा बाबा ने कैसे आग की लपेटों में सारा संसार जल गया, ये बाबा ने देखा, साक्षात्कार किया। फिर थोड़ी देर के बाद बाबा ने दूसरा रूप देखा विनाश का, जिसमें ग्रह युद्ध देखा, लोग एक दो को मार रहे हैं, काट रहे हैं, गोलियां चल रही है, बंदूकें चल रही है, तलवारें चल रही है, सिर काट रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, खून की नदियां बह रही है, जैसे ग्रह युद्ध, सिविल वॉर। और देखते ही देखते बाबा ने देखा कि ये जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, सब मर गए और एकदम शमशान घाट, सब मुर्दे पड़े हैं और खून की नदियां चारों ओर बह रही है, सब चारों ओर मरे हुए पड़े हैं। बाबा को कुछ समझ में नहीं आया ये मैं क्या देख रहा हूं। तीसरी थोड़ी देर के बाद तो तीसरा साक्षात्कार किया, जिसमें बाबा ने देखा पांचों ही तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, वो इतना कहर मचा रहे हैं, जैसे पृथ्वी भूकंप ला रही है और वायु खूब आंधी तूफान ला रहा है, आकाश में बिजली चमक रही है, अतिवृष्टि हो रही है। और धीरे धीरे बाबा ने देखा सब कुछ पांच तत्वों ने नष्ट कर दिया, एकदम सब जलमग्न हो गया, प्रलय हो गए। इस प्रकार से बाबा ने देखा। तो बाबा को समझ में नहीं आया, उनको तो जैसे रोना आ गया और कहा हे भगवान ये मैं क्या देख रहा हूं, क्या ऐसी ये सृष्टि ऐसे खत्म हो जाएगी? तो फिर भगवान ऐसी दुनिया तुमने बनाई क्यों जो खत्म ही होनी है एक दिन? तो कुछ और भी हमें बताओ कि हमें आखिर करना क्या है, ये किस लिए, ये क्या मैं देख रहा हूं, इसके पीछे राज क्या है? तो खूब पुकारने लगा पर अभी तो उसको समझ में कुछ भी नहीं आया। और फिर बाबा ने कुछ समय के बाद एक और सुंदर दृश्य देखा, जिसमें बाबा ने देखा कि कैसे वो जो आत्माएं थी सब विनाश हो गया, वो धीरे धीरे जैसे ऊपर की ओर गई, ऊपर की ओर गई और ऊपर जाते जाते एक अखंड ज्योति का महतत्व यानी परम धाम का साक्षात्कार किया, जिसमें बाबा ने देखा कि सब आत्माएं परम धाम के अंदर विराजमान है और एकदम उस अखंड ज्योति महतत्व में इतनी शांति है, एक शांति की अनुभूति बाबा ने की। परंतु बाबा को फिर भी समझ में नहीं आया ये मैं क्या देख रहा हूं। तो उस परम धाम का साक्षात्कार करने के बाद फिर बाबा ने देखा कि धीरे धीरे वो जो आत्माएं ऊपर गई थी वो धीरे धीरे एक प्रकाश से नीचे आ रही है, जैसे सितारे नीचे उतर रहे हैं। और देखते ही देखते बाबा ने देखा ये सितारे नीचे उतरते आ रहे हैं और मानो एक और विनाश जा रहे हैं ऊपर और दूसरी ओर नीचे आ रहे हैं, और जैसे नीचे उतर रहे हैं एक एक सितारा धरती पर आकर के एक सुंदर देवी या देवता का रूप धारण कर रहा है, बहुत सुंदर। वो देवी देवता उनके सामने दिखाई देने लगी और देखते ही देखते बाबा ने देखा वो सारा संसार बदल गया और एक सुंदर स्वर्गीय संसार देखा, इतना सुंदर था, जो पांचों ही तत्व इतना सुंदर रूप में उनको दिखाई दिए, जिन्होंने इतना कहर मचा के सब विनाश किया था, अब उनका सुख का स्वरूप ये बाबा ने देखा। और फिर देखा कि कैसे लक्ष्मी नारायण एक महल उनका सोने का हीरे जवाहरात का महल, और उस महल से लक्ष्मी नारायण निकल रहे हैं, बाग बगीचे में टहल रहे हैं। मानो एक स्वर्णिम संसार बाबा ने साक्षात्कार में देखा और एक आवाज सुनी, इसे आकाशवाणी उनको मिली कि लखीराज बाबू, लखीराज उठो जागो, उठो जागो, ऐसी दुनिया तुमको बनानी है, ऐसी दुनिया तुमको बनानी है। और फिर सुना, इस कलयुगी सृष्टि के महाविनाश के बाद ऐसी सतयुगी दुनिया आनी है और ये दुनिया तुमको बनानी है। ये आवाज सुनी उसने, आकाशवाणी के रूप में एकदम आवाज उनको आई। तो बाबा को तो कुछ समझ में नहीं आया कि ये मैं क्या सुन रहा हूं, क्या देख रहा हूं। फिर और ही प्रश्न उठे कि ऐसी दुनिया मैं कैसे बनाऊंगा। हे भगवान, ये काम तो आपने बहुत बड़ा दे दिया, लेकिन मुझे उसके लिए करना क्या होगा, कैसे बनाएंगे ये ऐसी दुनिया, हे भगवान ये भी तो कुछ बताओ। तो प्रश्न ही प्रश्न थे, एक पहेली पहेली उनके जीवन में आई, उनको समझ में कुछ भी नहीं आया, लेकिन इतना जरूर समझा कि भगवान को मुझसे कुछ कराना है, तो मैं यहां बनारस में बैठा रहूंगा क्योंकि वहीं उसको साक्षात्कार हुए, तो ये काम नहीं होगा, भगवान का बहुत बड़ा काम मुझे करना होगा, तो उसके लिए ये धंधा जो मैं कर रहा हूं ये कहां तक करता रहूंगा। तो कलकत्ता गया बनारस से, कलकत्ता तो दूर नहीं है बनारस से, तो वहां जाकर अपने पार्टनर को ये सब बातें बताई जो उसने अनुभव की थी बनारस में, और पार्टनर को कहा कि अब मैं ये धंधा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि बाबा जैसे हीरों को देखते थे तो हीरे तो बाबा को पत्थर दिखाई देने लगे, ये पत्थर कि क्या मैं पत्थरों का क्या धंधा करूंगा, भगवान हमें सच्चे रत्न दे रहा है, उन रत्नों का ही मुझे अब व्यापार करना है, ये झूठे रत्नों का व्यापार नहीं करना है। तो अपने पार्टनर को जो उनके साथ में उनकी बिजनेस में थे उनको समझा करके आखिर कहा कि जो मेरा हिस्सा है वो मैं वापस ले लूंगा और तुम ये दुकान संभालो। तब तक घर से घर उनका हैदराबाद सिंध में था और बाबा बहुत समय से बनारस में थे, कलकत्ता में गए, तो पार्टनर तो माने ही नहीं, लेकिन घर से तार आए कि अभी जल्दी आ जाओ, कुछ और घर का काम था, पोतरे का भी जन्म हुआ था, बहुत कुछ थी बातें, तो घर जाना था बहुत जरूरी, तो तार आई कि जल्दी आओ वापस। तब तक बाबा अपना फैसला कर रहा था अपने पार्टनर के साथ और बड़े नशे में था, क्योंकि उनको भगवान ने कुछ काम दिया था, अब उनको वो करना है। तो तार का उत्तर तार में दिया, नशे का जवाब दिया तार में, टेलीग्राम होती थी ना उस समय, और क्या टेलीग्राम में लिखा कि अलफ को अल्लाह मिला, अलफ माना मैं खुद, अलफ, अलफ को अल्लाह मिला और बे माना उनके पार्टनर, बे को मिली झूठी बादशाही, उनको दुकान दे दी, तो अल्लाह को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अल्लाह को, यानी आपकी तार हमको मिली कि जल्दी वापस आओ, हुआ रेल का राही, मैं ट्रेन से आ रहा हूं। तो एक कविता के रूप में तार भेज दी टेलीग्राम। अब घर वालों ने जब ये टेलीग्राम पढ़ी तो उनको तो समझ में नहीं आया, क्योंकि इतनी सारी बातें इनके साथ हो गई थी, घर वालों को तो कुछ पता ही नहीं था, परंतु आखिरी वाक्य उनको समझ में आ गया कि हुआ रेल का राही, मैं ट्रेन से आ रहा हूं। अब जब हैदराबाद सिंध वापस गया बाबा तो बिल्कुल बदला हुआ, कहां उनका सूट कोट और वो डंडा लेते थे एकदम जैसे राजा ही ठाट था, और एकदम बाबा बदल गया, धोती कुर्ता सफेद सब कुछ एकदम परिवर्तन आ गया। तो परिवार वालों ने सोचा ये क्या हो गया बाबा को, एकदम बदल गया, लेकिन बाबा के चेहरे से देखते थे कि ये तो अभी जैसे बहुत उपराम हो गए, धंधा भी वाइंड अप कर दिया सब कुछ, अभी तो इनको कुछ और कार्य भगवान ने दिया है वो करेंगे। अब इसके बाद जब जैसे वो वापस आए तो कुछ चमत्कार होने लगे। पहला चमत्कार क्या हुआ कि बाबा को जैसे ही देखते थे सामने से, बाबा खड़े हैं या बैठे हैं, तो ये बाबा का चित्र जो था, छवि, वो गुम हो जाता था और वो एक एकदम बाबा को कोई और रूप दिखाई देता था। लेकिन उसके पहले और क्या साक्षात्कार हुआ वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि जैसे ही वो पहुंचा हैदराबाद सिंध, तो घर में अकेले अकेले एकांत में शांत में बैठते थे, तो घर वाले भी उनको डिस्टर्ब नहीं करते थे कि इनको कुछ भगवान के अनुभव हो रहे हैं। तो एक दिन अपने कमरे में बैठे थे तो अचानक बाबा ने लाइट देखी, बहुत लाइट, उनकी चारों तरफ लाइट ही लाइट, सामने भी लाइट, प्रकाश ही प्रकाश, और बहुत तेज, पर जितना ही तेज उतना ही उसमें वो शीतलता थी, मानो उनको शिव परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, ज्योति का साक्षात्कार हुआ, वो तेजोमय ज्योति जिसमें प्रकाश भी था और शीतलता भी थी, ऐसा बाबा ने अनुभव किया। और बाबा की आंखें बंद थी और अंदर ही अंदर बाबा ये अनुभव कर रहा था। तो बाबा की लौकिक पत्नी, लौकिक बहू, ये सब उनके साथ ही थे। तो जैसे ही वो बाबा के कमरे में गए तो देखा कि बाबा के चारों ओर लाइट ही लाइट है और उनके चेहरे पर भी एकदम प्रकाश, उनका ललाट चमक रहा है और आंखें बंद है, और उन बंद आंखों में कुछ बोल रहे हैं, कुछ मुख से आवाज निकल रही है। और आवाज क्या निकल रही है, एक आवाज क्या थी कि निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ये आवाज उनके मुख से निकल रही थी। तो बेटी ने, बहू ने, पत्नी ने कुछ समझा नहीं, ये आवाज इनके मुख से निकल रही है, मैं निज आनंद स्वरूप हूं, मैं शिव हूं, मैं प्रकाश रूप हूं, मैं शिव हूं। मानो उस समय ब्रह्मा बाबा को शिव का साक्षात्कार हुआ और शिव परमात्मा ने अपना दिव्य साक्षात्कार करा करके उनमें दिव्य प्रवेश किया। तो ये दिव्य प्रवेश उनमें हुआ, जो उनकी पत्नी, बहू, बेटी ने, परिवार वालों ने देखा कि कुछ विचित्र सा अनुभव हो रहा है। और उसके बाद जब बाबा ने आंखें खोली तो एकदम आंखें भी चमक रही थी। तो बाबा से पूछा, बाबा आपने क्या अनुभव किया? तो बाबा ने कहा, कोई प्रकाश था, कोई शक्ति थी, बहुत तेजोमय, परंतु जितना ही तेज था उतनी शीतल थी, और वो प्रकाश मेरे अंदर प्रवेश हो गया। ये शिव परमात्मा का उनको साक्षात्कार हुआ, ये उस समय उनको समझ में नहीं आया, और शिव परमात्मा की उनमें प्रवेशता हो गई, ये भी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अनुभव किया कि कैसे वो ज्योति मेरे अंदर समा गई। अब वो ज्योति मुझसे बहुत बड़ा कार्य कराएगी, ऐसा मुझे कुछ अनुभव हो रहा है, कुछ आभास हो रहा है, पर क्या करेंगे, क्या कराएगी वो शक्ति, ये मुझे कुछ मालूम नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि विचित्र बातें होने लगी, चमत्कार हुए। क्या चमत्कार हुआ कि बाबा को जो भी देखता था वो बूढ़ा बाबा, वो नहीं दिखाई देता था, लेकिन उसके बदले छोटा बच्चा श्री कृष्ण उनको दिखाई देता था। उनकी पत्नी को भी बाबा से श्री कृष्ण का साक्षात्कार होने लगा, पत्नी को, बहू को, बच्चों को, पड़ोसी और सब उनसे साक्षात्कार करने लगे श्री कृष्ण का। जो उनके सामने आता था उनको श्री कृष्ण का अनुभव होने लगता था, या तो श्री कृष्ण उनमें देखते थे या तो ध्यान में चले जाते थे और श्री कृष्ण के साथ जैसे रास कर रहे हैं ध्यान में जाकर के। ये विचित्र अनुभव होने लगे लोगों को। तो एक एक आवाज फैल गई चारों ओर, न्यूज बन गई, बहुत बड़ी न्यूज, कि दादा लेखराज के पास एक चमत्कारिक शक्ति है जो उनके सामने जाता है उनको कृष्ण के साक्षात्कार होते हैं। तो दूर दूर से लोग आने लगे उनको देखने के लिए। ये इतनी न्यूज बन गई, 1936 की बात है, उस समय ये न्यूज बनी हैदराबाद सिंध में, और ये इंटरनेशनल न्यूज बन गई, जो अमेरिका की टाइम मैगजीन छपती है जिसमें इंटरनेशनल न्यूज आती है, उस मैगजीन में ये न्यूज छपी कि हैदराबाद सिंध में एक दादा लेखराज है, उसको जो भी देखता है उनको कृष्ण के दर्शन होते। और इतना ही नहीं, दूसरा क्या हुआ कि लोगों को घर बैठे भी कृष्ण के दर्शन उनके द्वारा हुए। श्री कृष्ण का वो साक्षात्कार करते थे और श्री कृष्ण के जैसे नजदीक जा रहे तो कृष्ण गुम हो गया, बाबा खड़े हैं तो कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनको तो जानते, इनको तो कोई नहीं जानता था, और बाबा सामने खड़े और कृष्ण पीछे से इशारा कर रहा है कि अगर मेरे से मिलना है तो इनके पास जाओ। अब इनको तो सब नहीं जानते थे, तो इनके पास जाओ तो कहाँ जाओ, कैसे जाओ, फिर ढूंढने लगते थे कौन है ये व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति, उनके पास जाने से श्री कृष्ण के दर्शन होते। तो कैसे कई बहनें माताएं वो ज्यादा आती थी उस समय हैदराबाद सिंध में, जो लोग रहते थे सिंधी लोग रहते थे, उनकी बिजनेस सारी दुनिया में होती थी, घर उनका हैदराबाद सिंध में था, लेकिन सिंधी लोग अमेरिका, लंदन, हांगकांग, जापान, यहाँ तक कि इंडोनेशिया, सिंगापुर, इन सब देशों में उनकी बिजनेस होती थी और हैदराबाद सिंध उनका घर होता था। बहुत धनवान लोग थे, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, और उनकी माताएं ये अनुभव करने लगी, साक्षात्कार करने लगी। अब इनका कुछ मैं आपको उदाहरण दूं तो ये है मम्मा, जिनका नाम राधे था, ये करीब 15-16 साल की थी, जो जगदम्बा सरस्वती के रूप में हमारी अलौकिक माँ, आपने इनके कई फोटो देखे होंगे। तो ये 15 साल की उम्र में कैसे इस संस्था से जुड़ी, 1936 में, ये बहुत अच्छा गीत गाती थी, हारमोनियम और सितार बजाती थी और नृत्य करती थी, इनके बहुत सारे अवार्ड्स लिए थे स्कूल में, और बहुत नामी ग्रामी लड़की थी, सब उसको जानते थे हैदराबाद सिंध में, छोटा सा शहर था, कोई बड़ा शहर तो नहीं था, तो इसीलिए। लेकिन इनके पिताजी की डेथ हो गई थी, बिजनेस में घाटा पड़ गया, तो हार्ट फेल हो गया, तो बिजनेस के वो सब देवाला मार दिया, तो मानो हार्ट फेल हो गया। तो इनकी जो माँ थी वो बहुत दुखी होने, बहुत दुखी रहती थी, बहुत रोती रहती थी। उस समय हैदराबाद सिंध में अगर कोई स्त्री विधवा बनी, मानो मानो काले कपड़े पहन करके अपनी छाती पीटते रहना, रोते रहना, साल भर तक अपने आप को कष्ट देती थी, और कोई उनका मुंह भी नहीं देखना चाहता था, भाई ये तो जैसे विधवा हो गई तो ये बहुत बड़ा अपशगुन है या कुछ है, कोई अगर रास्ते पर भी वो जाएगी तो लोग बाल्टी लेकर के पानी गिराएंगे कि कहीं कोई बात हमारे ऊपर ना आ जाए, ऐसे ऐसे गलत फहमियां तो बहुत थी, सुपरस्टिशन, वहम, अनुमान, शक, ये बहुत कुछ था। तो कैसे वो रोती रहती थी। तब इनकी जो बेटी थी वो तो थोड़े मॉडर्न ख्यालात की थी, तो उनसे ये रहा नहीं गया कि अपनी माँ का इतना दुख दर्द देखे, और इसने जब सुना था कि जो दादा के पास जाता उनको कृष्ण के दर्शन होते हैं, वो कृष्ण की भक्ति तो करती थी माँ इनकी, तो इसने कहा मैं आपको दादा के पास ले जाऊंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा वहां। तो जैसे ही अपनी माँ को लेके गई बाबा के पास, तो माँ ने बाबा को देखा और देखते ही उनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, तो बस चिपक गई मानो बाबा को कि मैं, मुझे तो कृष्ण मिल गया, मुझे भगवान मिल गया, मुझे रोती रोती आई, एकदम हंसने लगी एकदम। तो ये भी न्यूज बन गई हैदराबाद सिंध में कि राधे की माँ रोती रोती गई दादा के पास और हंसती हंसती आई, यानी इतना परिवर्तन उनके जीवन में आया। ऐसे बहुत सारी बहनें आई, और आते ही जैसे साक्षात्कार किया मानो उन्होंने अपना जीवन ही जैसे उनको वहीं समर्पित कर दिया, ऐसा भी अनुभव कईयों का था। अब ये तो माँ बेटी थी, पति भी गुजर गया, उनका भाई भी बेटा भी गुजर गया था, तो बहुत दुखी थे। अब ये दूसरा मिसाल हम आपको देंगे दादी प्रकाशमणि, जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका लगभग 38 साल तक रही पिताश्री जी के देहांत के बाद। तो दादी प्रकाशमणि भी 15 साल की थी जब आई। मम्मा और दादी प्रकाशमणि लगभग एक ही आयु के थे और साथ साथ स्कूल में पढ़ते थे। तो इनको इनका अनुभव क्या था कि सुबह सुबह इसने श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया। कृष्ण की भक्ति बहुत करती थी, गीता पढ़ती थी बहुत। तो कृष्ण की भक्ति करना ये सब तो उनका नित्य नियम था। तो सवेरे सवेरे कृष्ण के उनको साक्षात्कार हुए और बहुत अच्छा अनुभव हुआ। लेकिन जैसे श्री कृष्ण के सामने गई तो कृष्ण गायब हो गया और बाबा सामने आ गए और कृष्ण कहता है मेरे से मिलना तो इनके पास जाओ। अब इनको तो बाबा जानती नहीं थी, कभी देखा नहीं था। इनके पिताजी बहुत बड़े ज्योतिषी थे हैदराबाद सिंध में, सबकी जन्म पत्रियां देखते थे, ब्राह्मण थे। तो इनकी जब जन्म पत्री निकाली थी तब उसको महसूस हुआ कि ये जो मेरी बेटी है ये मीराबाई की तरह बनेगी, अपना जीवन श्री कृष्ण को भगवान को अर्पित करेगी। तो बहुत रिस्पेक्ट था अपनी बेटी के प्रति कि ये तो महान आत्मा है। अब क्या हुआ कि इसने अपना अनुभव किसी को भी नहीं बताया जो इसने किया। जब स्कूल गई तो स्कूल में इनकी जो सखियां थी उन्होंने, उनको पता तो चल ही गया था कि जो वहां जाता है उनको कृष्ण का दर्शन होता है। तो एक सखी ने कहा कि देखो ना, एक सत्संग होता है दादा लेखराज, वो जैसे ओम की ध्वनि करता था तो ओम की ध्वनि सब करने लगते थे और एकदम उनको कृष्ण के दर्शन होने लगते थे। तो तुम भी चलो, तुमको भी कृष्ण के दर्शन होंगे वहां चलोगी तो। इसने कहा मैं अपने पिता से पूछूं। तो जब स्कूल से वापस लौटी, अब पिता से जब तक पूछे तब तक पिता ने उनको कहा कि देखो बेटी, हमने सुना है एक दादा लेखराज है, उनके पास कोई शक्ति है, कोई जादू है, क्या है समझ में नहीं आता, उनके पास जो जाता उनको कृष्ण के दर्शन होते हैं, तुम जाके देख कर आओ। नहीं, जैसे बच्चों को माँ बाप कहते हैं। अब ये तीनों ही एक ही बात थी, उसको इतना समझ में नहीं आया, लेकिन पिता ने जब कहा तो अगले दिन वो गई। और जैसे ही सत्संग में पहुंची तो बाबा ओम की ध्वनि कर रहे थे और जाकर के जैसे ही बैठी तो ध्यान में चली गई। बाबा को देखते ही वो ध्यान में चली गई और श्री कृष्ण के साथ रास कर रही है। ऐसे बहुतों के अनुभव थे। तो मानो जो बाबा के सामने आए उन्होंने अपना जीवन ही उनको समर्पित कर दिया। अब ये भी एक कैसा चमत्कार था कि जीवन ही समर्पित कर दिया। तो बाबा उनको कहते थे कि अपने माँ बाप से पत्र लिखा के आओ कि मैं अपना जीवन श्री कृष्ण को अर्पित कर रही हूँ, या मेरी बेटी को श्री कृष्ण को अर्पित करा रही हूँ। तो क्योंकि परमात्मा का उनको आदेश था कि माताओं और बहनों को आगे करो। जब माताएं बहनें कन्याएं ये आध्यात्मिकता में निपुण होगी, शक्तिशाली होगी, तब ये संसार फिर से स्वर्ग बनेगा। नारी के पतन से संसार का पतन हुआ है और नारी के आध्यात्मिक उत्थान से फिर से संसार का उत्थान होगा, जिसको कहा यत्र नारियस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का सम्मान है, पूजन है, वहां देवताओं का वास है। तो इसीलिए नारी को आगे रखो, स्त्री को आगे रखो, वो शक्ति है। उस शक्ति को आगे रखो तो ये संसार फिर से स्वर्ग बन जाएगा। ये जैसे उनको शिव परमात्मा की प्रेरणा मिली और इसी के आधार से कई बहनें आई जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। और उस समर्पण के हिसाब से बाबा ने कैसे ये कार्य शुरू किया। और उस समय बाबा ने एक स्कूल भी खोली थी, एक बोर्डिंग स्कूल बाबा ने खोला था जिसमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ते थे। उन बच्चों को भी साक्षात्कार होने लगे। तो एक दिन कैसे बाबा ने सबको ये प्रतिज्ञा करवाई कि अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाना है। तो छोटे बड़े कन्याएं, माताएं, बहनें अपना प्रतिज्ञा की कि हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे, तो एक अलौकिक परिवार तैयार हो गया। और इन कन्याओं माताओं में इतनी ताकत आ गई, जो अपने जीवन को इतना योगी बनाने का उनको जैसे लक्ष्य मिला, और फिर तो इन अपना जीवन समर्पित कर लिया। उसमें युवा जो आज हमारी दादियां हैं, जैसे सुबह आप रतन मोहिनी दादी जी से मिले, आप भी 12 साल की उम्र में 1936 में आई थी अपनी माँ के साथ, और इनकी माँ बहुत ध्यान में जाती थी, बच्ची का माँ ज्यादा, और बाबा को जैसे देखती थी उनको कृष्ण का साक्षात्कार होता था, और माँ बेटी समर्पित हो गई। इनका भी पिता गुजर गया था, ये छोटी थी, तो बहुत जीवन में कईयों को दुख था, पर जैसे बाबा के सामने आए अपना जीवन समर्पित किया, और इसी के आधार से करीब 385 भाई बहनों ने अपना जीवन इसमें समर्पित किया, जिसमें परिवार के परिवार समर्पित हो गए। ये परमात्म शक्ति काम कर रही थी, ये कोई इनकी शक्ति नहीं थी, ईश्वर की शक्ति इनके द्वारा कार्य कर रही थी। और ये 385 भाई बहने जो परिवार के परिवार थे वो सब समर्पित हो गए। फिर हैदराबाद सिंध से बाबा कराची चले गए। कराची बड़ा शहर जैसे मुंबई और पूना, पूना मुंबई की भेंट में तो छोटा है, तो उस समय हैदराबाद सिंध से 3 घंटे का फासला था कराची, बड़ा शहर। तो क्योंकि इतने सारे भाई बहने आ गए, तो बाबा तो धनी थे ही, उन अपना धन इसमें लगाया और काफी सारे मकान ले लिए कराची में। और 1937 से लेकर के 1950 तक 14 साल बिल्कुल दुनिया की निगाहों से बाबा ने अपने बच्चों को दूर रखा और ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ी, अपने जीवन को आध्यात्मिक बनाया। कराची में सागर का किनारा के पास बाबा ले जाते थे, वह क्लिफ्टन बीच है कराची में, बहुत ही सुंदर बीच है, तो वहां पर वे जाकर के एक्सरसाइज भी करते थे, तपस्या करते थे, मानो दुनिया की निगाहों से दूर। और इन्हीं 14 सालों में दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन आया 1937 से 1950 तक। एक परिवर्तन आया जो विश्व युद्ध हुआ, बहुत भयंकर विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक, 6 साल तक ये लड़ाई विश्व युद्ध के रूप में चली और लाखों लोग दुनिया में मारे गए, बहुत कुछ तबाही हुई। और ये विश्व युद्ध तब समाप्त हुआ जब अमेरिका ने जापान पर, हिरोशिमा नागासाकी इन दो शहरों पर एटम बॉम्ब गिराए, और जैसे ही एटम बम गिराए तो पूरे शहर के शहर तबाह हो गए, मानो इस प्रकार का अणु युद्ध भी हुआ। और फिर भारत में तो और भी बुरा हाल था, यहाँ तो गृह युद्ध हुआ क्योंकि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 1947 में, और उस समय कैसे रक्त की नदियां बही, बहुत कुछ खून रेजी हुई, सिविल वॉर के रूप में, गृह युद्ध के रूप में हुआ और देश के दो टुकड़े हो गए। पर ये संस्था तो कराची में ही थी और वो पाकिस्तान बन गया, लेकिन किसी ने भी इनको इनका बाल बांका नहीं किया, ये ईश्वर की शक्ति थी, उनको कैसे सुरक्षित रखा, क्योंकि वहां पर उस समय जो स्थिति थी, हिंदू लोग तो नंगे पैर जेब खाली अपना सब कुछ छोड़ करके भागे, सब कुछ भी नहीं, जान बचाने के खातिर भागे वहां से, पर ये संस्था तो वही थी। और कैसे परमात्मा ने मदद किया, जो वहां के जो चीफ मिनिस्टर थे सिंध के, उन्होंने इनकी बहुत रक्षा की, किसी को अंदर आने नहीं दिया जहां ये रहते थे, और कैसे ये सुरक्षित ही रहे। वो कहते थे कि आप लोग यहीं रहो, आप नहीं जाना हिंदुस्तान, क्योंकि आप अगर यहाँ रहेंगे, आप लोग बड़े पाक लोग हो, पवित्र लोग हो, आप यहाँ रहेंगे तो हमारा देश पाक बन जाएगा, इसीलिए आप यहाँ रहो। अब परमात्मा को तो कुछ और ही मंजूर था, तो फिर भी 1947 में जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान अंग्रेजों से आजाद हुआ, लेकिन दो टुकड़े की अंग्रेजों ने देश को, फिर चले गए। परंतु उससे जो कुछ हुआ वो तो इतिहास हम सब जानते हैं। तो उसके बाद भी परमात्मा का आदेश था कि 3 साल वे वहीं रहे कराची में, और 1950 में जब भारत गणतंत्र बना 26 जनवरी को, उसके बाद परमात्मा ने उनको आदेश दिया कि अभी भारत में जाओ। भारत विश्व का लाइट हाउस बनेगा, भारत ही दुनिया को आध्यात्मिक पथ दिखाएगा, विश्व गुरु कहलाएगा, और विश्व में शांति फैलाने के लिए आप भारत में किसी पहाड़ पर जाओ, ये परमात्मा का आदेश मिला। मानो 1950 में ये संस्था वहां से भारत में आई, और पाकिस्तान सरकार का इतना सहयोग मिला जो उन्होंने कहा सब कुछ ले जाओ। तो ये देखिए, ये हमारी बहनें कैसे बिस्तरा बोरा बंद करके बैठी हुई है, और सरकार ने हम लोगों को जहाज भी दिया बहनों को कि इस जहाज में अपना सारा सामान लेकर के जाओ। तो कराची यहाँ आबू से बहुत दूर नहीं है, अगर आप माउंट आबू कल गए होंगे तो पीस पार्क गए होंगे, और पीस पार्क जाते समय बाएं तरफ आपने दूर से बड़े पहाड़ देखे होंगे, उन पहाड़ों के पीछे ही कराची है। तो वहां से बाय शिप आए, जहाज से आए, और सब कुछ लेकर के आए, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो इतना सहयोग, जैसे परमात्मा की मदद उनको मिली जो उनको सब कुछ लेने दिया, और वे माउंट आबू आए, क्योंकि परमात्मा का आदेश था कि आपको पहाड़ पर जाना है। तो कौन से पहाड़ पर जाएं? ये आबू का पहाड़ कराची से बहुत दूर नहीं है। तो ओखा बंदरगाह पर पहुंचे, ये जहाज का दृश्य है जहाँ बाबा बैठे हैं, और ये सब बहनें कैसे बाबा के अंग संग है। करीब 385 बहनें ज्यादा थी, और किस प्रकार ये भारत में आए, और फिर ओखा बंदरगाह है सौराष्ट्र में, जहां पर ये जहाज उतरा, और वहां से बाय ट्रेन आबू में आना हुआ। तो 14 साल के बाद ट्रेन देखी, ट्रेन भी कहां देखी, एक ही जगह थे कराची में, 14 साल के बाद दुनिया देखी। तो देखिए ये सब बहनें कैसे ओखा से आबू आ रहे हैं, और आबू रोड स्टेशन पर पहुंचे। तो ये परमात्मा ने ही माउंट आबू का स्थान चुना, क्योंकि परमात्मा कहते थे आप पहाड़ पर जाइए और वहां से विश्व को शांति का दान देना है। तो ये जो माउंट आबू का पहाड़ है, आबू पर्वत, ये अलग हिल स्टेशन जो भी हैं उनसे बिल्कुल न्यारा है। वैसे तो बहुत हिल स्टेशन है भारत में, चारों ओर है, शिमला, मसूरी, नैनीताल, आप महाराष्ट्र में भी कितने हैं, महाबलेश्वर आदि आदि बहुत हैं, लेकिन परमात्मा ने यही पहाड़ चुना। परमात्मा ने कहा कि कैसे इसी पहाड़ से आपको विश्व में शांति का संदेश देना और वाइब्रेशंस देनी है। तो ये जो माउंट आबू है ये राजस्थान में है, इस एरिया जो एरिया है यहाँ चारों ओर राजाएं बहुत थे, तो राजाओं ने अपने समर पैलेसेस माउंट आबू में बनाए हैं। जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं राजस्थान के, सौराष्ट्र के, गुजरात के, ये सब एक ही इलाका था, तो उनके लिए ये एक ही हिल स्टेशन है माउंट आबू। तो उन्होंने अपने समर पैलेसेस गर्मी के दिनों के लिए यहाँ महल बनाए हैं माउंट आबू में, और गर्मी के दिनों में अप्रैल मई जून में ये राजा महाराजा लोग यहाँ आते थे, बड़े बड़े महल हैं। तो 1950 में जब भारत गणतंत्र बना और सारे राजे रजवाड़े सब प्रजातंत्र में समा गए, तो वो इतनी जमीन इतने महल रख नहीं सकते थे। तो जितने भी आप ऊपर माउंट आबू में महल देखेंगे, बड़े बड़े मकान जो राजाओं के महल थे, वो या तो स्कूल बन गए हैं या तो होटल बन गए हैं। माउंट आबू का एक ही पर्यटन स्थल है वो, तो पर्यटक आते हैं और इसलिए बहुत सारे होटल्स हैं और स्कूल्स हैं, तो इसलिए हॉस्टल्स हैं। तो हॉस्टल्स, स्कूल्स और होटल और दुकानें, बस यही यहाँ का उद्योग है माउंट आबू का। और मंदिर, बहुत मंदिर है भारत में, ये माउंट आबू में। तो बहुत इसकी कहानी है। तो इतना बड़ा तीर्थ स्थान भी है, केवल पर्यटन स्थान ही नहीं है माउंट आबू। तो अब कहाँ रहे, तो कैसे माउंट आबू में एक ब्रिज कोठी, भरतपुर राजा की कोठी थी, बड़ा महल था, उसको चुना उन्होंने और वहां रहे कुछ समय। फिर उसके बाद कोटा हाउस रहे, कोटा और धौलपुर ये राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर वे रहे। फिर वो राजस्थान सर्किट हाउस बन गया। तो वर्तमान जो पांडव भवन है वो पोकरान हाउस कहलाता था, पोकरान, जहां राजस्थान में पोकरान, जहां एटम बॉम्ब का एक्सपेरिमेंट किया भारत ने, उसके राजा का, उसके ठाकुर का ये कोठी थी पुरानी। तो वहां आए पांडव भवन में। तो कैसे वहां माउंट आबू में आकर के बाबा बसे, बाबा के बच्चे बसे और बाबा ने तपस्या शुरू की। फिर 1950 में जैसे यहाँ आना हुआ, तो जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया था, उनके जो रिश्तेदार थे वो तो पहले आ गए थे भारत में, तो उनको जैसे मालूम पड़ा कि हमारे ये परिवार के लोग, ये संस्था हिंदुस्तान में आ गई, ये आबू में है, तो उन्होंने निमंत्रण दिया कि आप हमारे पास आओ और आपने जो 14 साल इतनी तपस्या की, इतना सारा ज्ञान अर्जित किया है, वो हमको भी आकर के दो। तो उनमें से एक उदाहरण हम आपको देंगे कि कैसे वहां तो तपस्या करते ही थे, लेकिन कैसे भारत में हमारे सेवा केंद्र खुले। तो ये हमारी एक अन्य दादी है, मनोहर इंदिरा दादी, जो ज्ञान सरोवर हमारा जो परिसर है उनकी डायरेक्टर थी। ये भी 12 साल की उम्र में 1936 में आई और आते ही उसने बहुत साक्षात्कार किए, तो जीवन को समर्पित किया। तो 1952 में ये संस्था तो 50 में आ गई थी, तो कैसे इनके लौकिक रिश्तेदारों को जैसे मालूम पड़ा कि ये आबू में आ गए हैं, तो वो आए लेने के लिए कि आप हमारे पास आओ। तो दिल्ली में इनके भाई बहने रिश्तेदार रहते थे, तो आप दिल्ली आइए और दिल्ली में ये ज्ञान जो आपने पाया है वो हमको भी दीजिए। तो दादी जी, बाबा ने उनको दिल्ली भेजा। तो जैसे ही अपने रिश्तेदारों के पास गई, तो अभी और चमत्कार होने लगे। एक उदाहरण ये है, बाकी औरों के भी चमत्कार ऐसे ही हुए। तो जैसे ये घर में पहुंची, तो ये ओम की ध्वनि बहुत सुंदर करती थी, ओम, बहुत ऊंचे स्वर में लंबे टाइम तक ओम की ध्वनि करती थी। तो जो उनके मित्र संबंधी बैठते थे वो भी ओम की ध्वनि साथ में जैसे करते थे, बिल्कुल इनको देखते देखते जैसे इनको, इनसे देवी का साक्षात्कार करने लगे कि देवी आई है हमारे घर में, देवी आई है। और फिर ये प्रवचन देती थी, फिर ये भी न्यूज दिल्ली में फैल गई कि एक देवी आई है आबू से। तो मंदिरों ने इनको निमंत्रण दिया, मंदिर वालों ने, देवी के मंदिरों में, शिव के मंदिरों में ये जाती थी वहां भाषण करने के लिए। तो जैसे ये भाषण करती थी तो लोगों को इनसे बहुत अनुभव होते थे, तो मंदिर भी छोटे पड़ गए, क्योंकि ये भाषण करती थी, बहुत सुंदर भाषण करती थी, परमात्मा की एक का सही परिचय देती थी और मेडिटेशन सिखाती थी, तो सबको शांति का अनुभव होने लगा, तो स्थान ही छोटे पड़ गए। फिर जमुना के किनारे जाकर के ये भाषण करती थी। अब एक मास तक तो वो रही दिल्ली में, उसके बाद इसने कहा मैं वापस जाऊंगी माउंट आबू, घर वालों को कहा और जो भी उनसे सुनते थे, तो सब ने कहा आप ऐसे हमको छोड़ के कहाँ जाओगी, अगर आप चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। तो इसने बाबा को पत्र लिखा कि बाबा मैं क्या करूँ, तो बहुत सेवा है, लोग हमको छुट्टी नहीं दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि अगर आपको वहाँ सेवा बहुत है तो आप भले रहो, पर उनको कहो कि एक मकान लेकर के दे, हम अलग से मकान में रहेंगे और सेवा केंद्र के रूप में इस मकान में सेवाएं करेंगे, और जिनको आना है वो इस मकान में आएंगे, नहीं तो कहाँ तक किसके घर में रहे या मंदिर में केवल करेंगे। तो उन्होंने कहा कौन सी बड़ी बात है, हम आपको मकान लेके देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बहुत अच्छा मकान लेकर के दिया और हमारा पहला सेवा केंद्र भारत में आबू के बाहर वो दिल्ली में खुला। मानो उसके बाद धीरे धीरे कैसे सेवा केंद्र चारों ओर खुलते गए। तो जिन्होंने 14 साल तपस्या की इन बहनों को बाबा ने सब जगह भेजा, जहां जहां से निमंत्रण मिला उनके परिवार वालों से, और वहां वहां जाकर के सेवा केंद्र खोले। और फिर वो जो जहां जहां सेवा केंद्र खुले वहां से भाई बहने माउंट आबू आते थे और यहां आकर के बाबा मम्मा से मिलते थे। और कैसे, एक 16 साल की बच्ची थी, वो अम्बा माँ के रूप में थी, तो मम्मा भी कई जगह जाती थी, माँ के रूप में उनको सब देखते थे। कोई बहुत बड़ी नहीं थी उम्र में, लेकिन सब सबको उनसे जैसे अम्बा के साक्षात्कार होते थे। तो मम्मा भी बहुत ट्रैवल करती थी, कैसे लखनऊ में गई, वहाँ पर इनके बड़े प्रोग्राम होते थे, कानपुर में गई। अब ये मम्मा बहुत यात्रा करती थी, और दादी प्रकाशमणि उनके साथ रहती थी, उनको कहते थे मुन्नी मम्मा, 3/4 मदर, माँ, अलौकिक माँ के रूप में। और कैसे दादी प्रकाशमणि और ने माँ मम्मा से, आयु उनकी समान थी, आयु में ज्यादा अंतर नहीं था, पहले तो अपने एक ही क्लास की फ्रेंड्स थी, एक ही कक्षा में पढ़ती थी, और साथ में ही जैसे ज्ञान में आई। और कैसे मम्मा से इन्होंने बहुत शक्ति पाई, और मम्मा धीरे धीरे अपने पुरुषार्थ से कैसे न्यारी होती गई, और बाबा मम्मा ने अपने बच्चों की पालना की, सेवा केंद्र बढ़ते गए। और 1965 में 24 जून को मम्मा ने अपना देह त्याग किया, 46 वर्ष की उम्र में अपना देह त्याग किया, काफी छोटी उम्र थी उसमें अपना देह त्याग किया। तो मम्मा हमारी फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी। मम्मा के साथ दादी प्रकाशमणि और भी कई बहनें थी। तो शुरू शुरू में बाबा ने अपनी चल अचल प्रॉपर्टी सब इन माताओं बहनों को अर्पित कर दी, ये परमात्मा का उनको आदेश मिला। और मम्मा एडमिनिस्ट्रेशन करने में नंबर 1 सबकी लीडर थी, क्योंकि माँ के रूप में वो पालना कर रही थी, बहनों को आगे किया था। तो कैसे मम्मा के देह त्याग के बाद दीदी मनमोहिनी ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनी। दीदी मनमोहिनी की भी कहानी है। दीदी जी, इनका लौकिक नाम गोपी था, तो ये भागवत बहुत पढ़ती थी, भागवत, यही कहती थी मैं तो श्री कृष्ण की गोपी हूँ, बस मुझे एक बार श्री कृष्ण के दर्शन हो जाए। तो बहुत भक्ति करती थी और भागवत इनको कंठस्थ था। तो कैसे ये जैसे बाबा के सामने आई तो इनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, और ये बहुत धनी परिवार की थी। इनका लौकिक में चाचा चाची वो थे जो जिन्होंने बॉम्बे में, कराची से आकर के बॉम्बे में इन्होंने जसलोक हॉस्पिटल बॉम्बे का बनाया। जसुमती और लोकुमल ये इनके चाचा चाची थे, बहुत धनी थे। बॉम्बे का केसी कॉलेज, किशनचंद चेलाराम कॉलेज, ये इनके ही परिवार वालों ने बनाया था। तो वो जो बहुत धनी सिंधी थे, उन्होंने बॉम्बे में हॉस्पिटल बनाए, कॉलेज बनाए, तो दान पुण्य तो बहुत करते थे, तो उसी परिवार की थी। और ये जब समर्पित हुई तो भी एक बड़ी न्यूज बन गई कि अरे गोपी कैसे वो भी अपने आप को समर्पित किया। मानो कि उस समय बहुत सारे समर्पित हुए। तो दीदी मनमोहिनी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में बनी 1965 में। आप भी दिल्ली में रहती थी और बाबा ने उनको दिल्ली से बुलाया। तो फिर बाबा ट्रैवल करते थे बहुत, ये बाबा दिल्ली में गए हुए हैं, जहाँ छोटी छोटी कुमारियां बाबा के आगे कोई कविता गा रही है, गीत गा रही है, और वे भी सब माउंट आबू आते थे बाबा के संग। और फिर आप देख रहे छोटे बच्चे, परिवार के परिवार बाबा से मिलने के लिए आते, और बाबा भी उनको कितना स्नेह दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, भाषणा दे रहे हैं, अलौकिक माता पिता का स्वरूप बन करके ये सब बाबा के सामने आते। तो बाबा पत्र बहुत लिखते थे, बहुत पत्र लिखते थे, कोई ऐसा पत्र नहीं था जिनका बाबा जवाब नहीं देते थे। हाँ, हर एक पत्र का बाबा जवाब देते थे। मैं 1967 में मैंने भी बाबा को पत्र लिखा था, क्योंकि मेरे घर वाले कहते थे कि आपको डॉक्टर बनना है, और मेरी इच्छा नहीं थी, मुझे था मैं बस यही सेवा करूं, डॉक्टर बन के मैं कितने मरीजों की सेवा करूंगी, मुझे ये सेवा करनी है। और बाबा जब भी मुझे देखते थे साकार में, मैं इंग्लिश में बोलती थी तो बाबा को बहुत अच्छा लगता था कि ये इंग्लिश में बहुत होशियार है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ी बॉम्बे में, तो ये बहुत होशियार है इंग्लिश में, तो बच्ची तुम और होशियार हो जाओ तो बाबा आपको विदेश भेजेगा। बाबा हमेशा कहते थे तुमको विश्व की सेवा करनी है, विश्व की सेवा करनी है। तो अब घर वाले कहे कि तुम डॉक्टर बनो, तो मैंने बाबा को पत्र लिखा था, बाबा मैं क्या करूं, तो बाबा ने मुझे जवाब लिखा कि बच्ची बाबा की आप में बहुत उम्मीद है, आप बहुत बड़ी सेवा करोगी, तुम रूहानी डॉक्टर बन करके विश्व की सेवा करो। ये बाबा ने मुझे श्रीमत दिया, रूहानी डॉक्टर। शरीर के का डॉक्टर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, वो जिस्मानी डॉक्टर है, पर रूहानी रूहों का डॉक्टर बनो, आत्माओं का डॉक्टर बनो और विश्व की सेवा करो, क्योंकि विश्व को शांति की जरूरत है, इस ज्ञान की जरूरत है। तो इसीलिए बाबा ने मुझे पत्र में ये लिख दिया। तो हमने अपना सारा प्लान्स चेंज कर दिया, फिर तो बीएससी किया और फिर समर्पित हो गए। तो बाबा सबको पत्र लिखते थे। ये पांडव भवन में आपने कल झोपड़ी देखी होगी बाबा की, उन दिनों में तो बाबा बहुत सिंपल रूप से झोपड़ी बनवाते थे, खजूर के पेड़ बहुत है माउंट आबू में, तो उनके जो ताजे ताजे पत्ते होते थे उनसे ही बाबा वो झोपड़ी बनवाते थे गर्मी के दिनों में, और अंदर बहुत ठंडक होती थी, बाबा वहां बैठ करके पत्र लिखते थे। तो ये बाबा की झोपड़ी है जहाँ पत्र बाबा लिखते थे। और फिर ये हिस्ट्री हॉल भी आपने कल देखा होगा, या जब माउंट आबू गए तो आपने ये देखा होगा जहाँ बाबा बैठ करके वाणी चलाते थे, जो अब भी हम रिवाइज कोर्स के रूप में सेवा केंद्रों पर ये वाणी सुनते हैं। तो इसी गद्दी पर ये इस तरफ जो गद्दी है उस पर बाबा बैठ करके वाणी चलाते थे, जिसको हम ज्ञान मुरली कहते हैं। कल सवेरे आपको ये सुनाया जाएगा। तो एक तरफ बाबा बैठते थे, एक तरफ मम्मा बैठते थे। आज भी वही गद्दी वहाँ हिस्ट्री हॉल में रखी गई है, उसको चेंज नहीं किया है। और फिर इसी हिस्ट्री हॉल में पांडव भवन के जो निवासी रहते हैं वो यहाँ क्लासेस करते रहते हैं, हमारे अलग अलग वहाँ क्लासेस होते रहते हैं। तो ये जैसे चार धाम है, एक तरफ आपने देखा बाबा की झोपड़ी जहाँ बाबा जाकर पत्र लिखते थे, दूसरा ये हिस्ट्री हॉल, और तीसरा आपने देखा होगा बाबा का कमरा, वो आपको बताएंगे, और चौथा शांति स्तंभ। तो कैसे बाबा ने सबको जो ज्ञान दिया, यही कहा कि याद आपको एक परमात्मा को करना है, इनको नहीं करना है, और सारे विश्व के लिए ये ज्ञान है। कोई भी धर्म जाति भाषा प्रांत देश वाला हो, ये आध्यात्मिक ज्ञान उनके लिए है। तो यहाँ पर कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी यहूदी छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सब ये आध्यात्मिक ज्ञान ले सकते हैं, क्योंकि आत्मा का ज्ञान परमात्मा का ज्ञान तो सबके लिए है, सब परमात्मा के बच्चे हैं। तो कैसे परमात्मा ने इनके द्वारा उस एक का ही परिचय दिया कि वो सबका मालिक वो एक है, उसको याद करो, वो निराकार है, वो ज्योति स्वरूप है। और कैसे बाबा का ये कमरा है जो आपने देखा होगा कल, बाबा ने 93 वर्ष की उम्र में कैसे अपने कमरे में ही देह त्याग किया। ये बाबा की खटिया है, बेड है जहाँ बाबा बैठे थे, और दादी प्रकाशमणि उनके सामने थे, और बाबा ने जैसे उनको दृष्टि दी और दादी जी ने बाबा का हाथ पकड़ा हुआ था, तो दृष्टि और हाथ से कैसे आत्मा उड़ गई और दादी प्रकाशमणि जी को शक्ति प्रदान करके गई। उसी समय बाबा क्लास करा करके लौटे थे, हिस्ट्री हॉल से वापस आए थे अपने कमरे में, और बाबा ने अंत में 3 शब्द उच्चारण किए थे, बच्चे सदा निराकारी निरहंकारी और निर्विकारी रहना। अच्छा बच्चों से छुट्टी, तो निराकारी निरहंकारी निर्विकारी रहना, ये जैसे सबके कानों में गूंज रहे थे, ये बाबा के अंतिम शब्द बाबा ने कहे और कमरे में आए, और वहां पर ही अपने कमरे में रात के लगभग 9 बजे थे, बाबा ने अपना देह त्याग किया और अव्यक्त बन गए। अव्यक्त अर्थात देह तो त्याग किया लेकिन अव्यक्त देह धारण किया, सूक्ष्म देह धारण किया। और शिव परमात्मा ने बहुत सुंदर संदेश दिया संदेशियों के द्वारा कि कैसे अब शिव परमात्मा और अव्यक्त ब्रह्मा ये मिल करके फिर से सारे विश्व में ये संदेश फैलाएंगे। अब जो जिस गति से सेवा हो रही थी वो तो फिर भी चीटी मार्ग की सेवा थी, अभी विहंग मार्ग से सेवा होगी और लाखों आत्माएं आकर के परमात्मा से अपना खोया हुआ अधिकार प्राप्त करेंगे। तो कैसे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, और 18 जनवरी की शाम थी 1969 को बाबा अव्यक्त हुए और बाबा के पार्थिव देह का अंतिम संस्कार आश्रम के अंदर ही किया गया। 21 जनवरी को अंतिम संस्कार आश्रम के अंदर ही किया गया और ब्रह्मा बाबा की स्मृति में ये शांति स्तंभ बनाया गया है। और हर 18 जनवरी पर हजारों भाई बहने आते हैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। तो ये भी एक तीर्थ स्थान कहो बना है। तो एक बाबा की झोपड़ी, बाबा का कमरा, बाबा का हिस्ट्री हॉल जहां बाबा वाणी चलाते थे, और ये शांति स्तंभ, ये चार धाम ब्रह्मा बाबा के हैं जो पांडव भवन में ही हैं, जो हमारा ओरिजिनल सबसे पुराना पांडव भवन है जो हेडक्वार्टर्स है। फिर तो उसके बाद कैसे बाबा के बच्चे बढ़ते गए तो पांडव भवन तो छोटा पड़ने लगा, चारों ओर सेवा केंद्र खुलने लगे। तो ये चार धाम की यात्रा करने के लिए बहुत भाई बहने आते रहे, परंतु अब स्थान की कमी पड़ने लगी। तो कैसे दादी प्रकाशमणि जी ब्रह्मा बाबा के बाद मुख्य प्रशासिका के रूप में रही, और 1969 से लेकर 2007 तक दादी प्रकाशमणि मुख्य प्रशासिका थी, जिनके काल में ये संस्था दिन दुगनी रात चौगनी गति से बहुत बढ़ती गई, जो आज इतने हजारों सेवा केंद्र और लाखों भाई बहने इसकी सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। तो दादी प्रकाशमणि जी के साथ अन्य भी दादियां थी। दादी जब हम कहते हैं तो बड़ी बहन को दादी कहते हैं, जैसे हिंदी में बड़ी बहन को दीदी कहते हैं, मराठी में बड़ी बहन को क्या कहते हैं, ताई ना, क्या कहते हैं बड़ी बहन को, ताई, बड़ी बहन को ताई कहते हैं। तो सिंधी भाषा में बड़ी बहन को दादी कहते हैं, बंगाली भाषा में भी मतलब भाई को दादा कहते हैं, बड़े भाई को तो दादी कहते हैं बड़ी बहन को। तो ये सब हमारी दादियां माना बड़ी बहनों के रूप में थी, जिन्होंने माता पिता के बाद तो बड़ी बहन ही पालना करती है। तो जो शुरू में जो समर्पित हुई दादियां उस समय 12-13 साल की थी, और कैसे ये दादियों के रूप में हमारी सेवा की। और विदेशों में सेवा केंद्र बाबा के अव्यक्त होने के बाद खुला। ये 1975 में पहला ग्रुप माउंट आबू आया है, विदेशियों का ग्रुप, लंदन में, हांगकांग में, विदेशों में भी सेवा केंद्र खुलते गए। फिर तो समय स्थान छोटा पड़ा तो पांडव भवन के सामने ही ओम शांति भवन, एक बहुत बड़ा पहाड़ था, और कैसे वहां ये हॉल बनाया गया, यूनिवर्सल पीस हॉल, जहाँ 3000 लोगों के रहने की माना क्लास करने की व्यवस्था है, कोई पिलर बिना वो हॉल बना। लेकिन अभी हॉल तो बन गया 3000 लोगों के लिए, पर रहने की व्यवस्था तो इतनी थी नहीं। तो फिर उसके बाद पांडव भवन के बाहर ज्ञान सरोवर बना, लेकिन इस हॉल में बहुत सेवाएं हुई, कई संत सम्मेलन किए। तब तक हम लोग यूनाइटेड नेशंस के भी मेंबर हो गए, तो यूएन से भी लोग आते थे, संत सम्मेलन, संत महात्मा, साधु सन्यासी सब आते थे, और हम लोग बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस करते थे। ये ज्ञान सरोवर 91 में बना, वहां जमीन ली गई, और कैसे ये ज्ञान सरोवर का निर्माण हुआ, जो हमारा अकेडमी है जहाँ अलग अलग विंग्स के प्रोग्राम होते हैं, फिर 91 में ही ग्लोबल अस्पताल बना जो गांव-गांव में जाकर के सेवा करता है, जिसमें 75% जो डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ ये सब इस ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग का लाभ लेके समर्पित रूप से सेवाएं कर रहे हैं। ये तनख्वाह के हिसाब से नहीं करते हैं, समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। और फिर उसके बाद ये जो शांति वन का ये डायमंड हॉल देख रहे हैं, ये 1996 में जब इस संस्था की डायमंड जुबली थी, 60 साल हो गए थे 96 में 96 में, तब ये हॉल का उद्घाटन हुआ जिसमें 20,000 भाई बहने बैठ सकते हैं इस हॉल में, और काफी रहने की भी व्यवस्था हो गई। तो भी हॉल तो बना लेकिन फिर भी 10,000 के रहने की व्यवस्था थी, तो धीरे धीरे मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स बना जहां आप ठहरे हैं, तो 15,000 5,000 वहां रह सकते हैं। अब एक और जितना ही बड़ा मनमोहिनी वन है उतना ही दूसरा एक आनंद सरोवर या पास में बन रहा है, वहां भी 5,000 लोगों के रहने की व्यवस्था होगी। तो इस प्रकार ये भव्य कार्य चल रहा है जिस भव्य डायमंड हॉल में आप सभी बैठे हैं, और बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। दादी प्रकाशमणि जी कैसे 85 साल की उम्र में दादी ने अपना देह त्याग किया 2007 में, आज से 6 साल 7 साल पहले, और 25 अगस्त को 85 साल की उम्र में दादी ने यहाँ शांतिवन में ही, दादी स्कॉटेज है वहाँ पर ही दादी ने अपना देह त्याग किया, और उनकी याद में यह प्रकाश स्तंभ बनाया गया है जो सामने आप इस हॉल के आगे देखते हैं, जहाँ पर हम सभी शांति का अनुभव करते रहते हैं। और फिर दादी जानकी जी इस समय दादी प्रकाशमणि जी के बाद मुख्य प्रशासिका बनी, वर्तमान समय दादी जानकी जी लंदन में हैं, क्योंकि विदेशों की भी सेवा आप बहुत करते हैं, और इनकी उम्र इस समय 96 वर्ष है। आप 20 साल की उम्र में आई थी इस संस्था में और इस समय 96 वर्ष है, पर कितनी एक्टिव है आज भी, जो देश विदेश में भ्रमण करते हैं, अभी लंदन में है, कुछ समय के बाद अमेरिका जाएंगे, कनाडा जाएंगे, क्योंकि सब जगह बाबा के सेंटर्स हैं और दादी जी को बुलाते रहते हैं। दादी जानकी जी कैसे यहाँ प्रकाशमणि ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ हमारी ट्रेनिंग्स होती रहती है कुमारियों के लिए, टीचर्स के लिए, तो दादी जी उनको प्रेरणा देती रहती है, जन जागृति के लिए ये विशाल सभाएं होती है। और दादी जानकी के साथ हमारी सह मुख्य प्रशासिका दादी हृदय मोहिनी जी है, जिनको हम प्रेम से दादी गुलजार कहते हैं। इनकी विशेषता है कि आप 9 साल की उम्र में आई थी अपनी माँ के साथ 1936 में, और कैसे जैसे ही ये माँ के साथ आई तो इन्होंने बाबा को देखा और तुरंत ध्यान में चली गई और श्री कृष्ण का उसने साक्षात्कार किया। तब से उनको बहुत साक्षात्कार होते हैं, हमारी मुख्य ट्रांस मैसेंजर है, और इसने ही ये साक्षात्कार किया कि कैसे पिता श्री ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के बाद अव्यक्त ब्रह्मा फरिश्ता बनेंगे। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार इन्होंने किया, और बाबा को भी इन्होंने बताया कि आप कैसे संपूर्ण बन करके फरिश्ता अव्यक्त ब्रह्मा बनेंगे। और उसके बाद जैसे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो शिव परमात्मा और ब्रह्मा पिता की संपूर्ण आत्मा इनके तन में प्रविष्ट होती है, और इसी हॉल में कार्यक्रम चलता है जिनको हम अव्यक्त बाप दादा कहते हैं। और अव्यक्त बाप दादा के रूप में हमें शिव पिता और ब्रह्मा पिता की वाणी मिलती है और हम सब इसी हॉल में सुनते हैं। तो जब शिव पिता ब्रह्मा बाबा की प्रवेशता इनके तन में होती है तो बिल्कुल इनका चेहरा बदल जाता है, एकदम आवाज बदल जाती, सब कुछ बदल जाता है, महसूस होता है अभी गुलजार दादी नहीं, हृदय मोहिनी दादी नहीं है, क्योंकि शिव परमात्मा अपना कार्य करते हैं ब्रह्मा बाबा के संग। तो कैसे ये कार्य अभी भी चल रहा है, और शिव परमात्मा ने हम सबको यह वायदा किया है कि साथ चलेंगे, इस सृष्टि का परिवर्तन होना ही है, ये कलयुग बदल करके सतयुग होना ही है और हम सब वापस परम धाम जाकर फिर उस सतयुगी दुनिया में आएंगे। आप सब भी तैयार हो उसके लिए? जो तैयार है हाथ उठाएं। अरे वाह, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आज सुबह आपको बताया कि 5 खोटे पैसे दान करने पड़ेंगे और 5 खोटे पैसे देने पड़ेंगे, परंतु साथ में एक आना लेकर के जाना है ना। गीत है, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, कुछ दे के जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे। तो देके क्या जाना है? अपनी बुराइयों को, कमियों को, कमजोरियों को, कोई व्यसन है, जो कुछ भी आपको दुख दे रही है, बात गुस्सा है, कोई भी विकार, वो स्वाहा करके जाओ शिव बाबा के तीर्थ स्थान पर। तीर्थों पर जाते कुछ दान करते हैं ना, तो ये दान करो। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, शिव को कुछ नहीं चाहिए। शिव कोई लड्डू पेड़े नहीं मांगता है, वो तो अक के फूल, धतूरा और बेलपत्र, ये सब कड़वी कड़वी चीजें ही शिव को अर्पित करते हैं। शिव के लिए कहते हैं नीलकंठ हो गया, जहर पी लिया। तो वास्तव में शिव परमात्मा हमसे बुराई मांगते हैं, हमारी कमियां कमजोरियां मांगते हैं। तो ये दान करके जाओ शिव बाबा के आगे और एक आना लेकर के जाओ। एक आना माना, हाँ वो 16 आना होते थे ना पहले एक रुपए में, तो हम कहते एक आना लेकर जाओ माना एक बार रोज सेवा केंद्र पर आना, जहां आप जा रहे हो ना, तो वहां 1 घंटा रोज आना, 1 घंटा देना, 23 घंटा अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए, गृहस्थी के लिए, धंधे के लिए, नौकरी के लिए, लेकिन 1 घंटा रोज अपनी आत्म कल्याण के लिए सेंटर पर जाओ। अब जो ये वायदा करते वो हाथ उठाओ। जरूर, हाँ देखो शिव बाबा देख रहा है, ये आप भगवान के दरबार में हाथ उठा रहे हो, वायदा कर रहे हो, तो जरूर जाना। तो आपको बहुत मदद मिलेगी, बहुत शक्ति मिलेगी, बहुत जीवन में परिवर्तन आएगा, आपका घर ही स्वर्ग बन जाएगा सचमुच। तो ये जन्म तो आपका सफल होगा ही, पर और 21 जन्म आपके सफल होंगे, और तो क्या 63 जन्म भी और आगे सफल होगा, 84 जन्म ही आपके सफल हो जाएंगे। यही हमारे आपसे शुभकामना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आपने ये करीब 1.5 घंटे में ये पूरा इतिहास सुना, अब इसका पूरा लाभ लेना है। तो इसके बाद का जो सत्र होगा वो बहुत ही अच्छा, जिसमें आप बिल्कुल शांति की अनुभूति करेंगे। तभी हम फिर 2 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे, उसके बाद दूसरा सत्र आरंभ।